जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय हो जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल जया प्रभुपदा जय प्रभुपदा विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। श्री वीरचंद्र प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगाम हरे कृष्णा। तो आज का दिन बहुत ही पवित्र है। वैसे पूरा महीना पवित्र है। कौन सा महीना है? कार्तिक का महीना पवित्र है। और आज का दिन विशेष पवित्र है। क्या है आज विशेष? वीरभद्र प्रभु या वीरचंद्र प्रभु दोनों नाम है। वीरचंद्र प्रभु या वीरभद्र प्रभु का आविर्भाव है। तो बहुत ही पवित्र दिन है आज। तो उनके विषय में तीन अलग अलग पुस्तकों से मैं जो है पढ़ के सुनाऊंगा उनके विषय में। तो कुछ विशेष बातें भी हैं। तो चैतन्य चरितामृत आड़ इलाके अध्याय 11 के श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12 इन प्यारों में इनका वर्णन आता है। तो सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि नित्यानंद प्रभु की सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोस्वामी है, नित्यानंद प्रभु की सबसे बड़ी शाखा। ये चैतन्य वृक्ष का वर्णन किया जा रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु जो है एक वृक्ष के समान है, है ना, और उनकी जो शाखाएं हैं इस वृक्ष में जो है प्रेम के फल लगे हुए हैं। चैतन्य वृक्ष ये किस चीज का वृक्ष है? ये प्रेम, कृष्ण प्रेम का वृक्ष है। और ये वृक्ष जो है क्या उत्पन्न करता है? फल उत्पन्न करता है। और कौन से फल उत्पन्न करता है? कृष्ण प्रेम के फल उत्पन्न करता है, है ना। और इस वृक्ष में जो है मतलब ये विशेषता है कि शाखाओं में भी फल उत्पन्न होते हैं, तने में भी फल उत्पन्न होते हैं, पत्तियों में भी, हर जगह फल ही फल उत्पन्न होते हैं। ऐसा विशेष फल है ये, ऐसा विशेष वृक्ष है ये चैतन्य वृक्ष, है ना। तो इसमें जो है चैतन्य वृक्ष में जो है एक बहुत बड़ी जो मोटी शाखा निकली है वो नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु, है ना। तो ये एक प्रकार की शिष्य परंपरा भी है, क्योंकि शाखा से दूसरी शाखा निकलती है, तो एक शिष्य परंपरा ही तो है, है ना। जैसे किसी परंपरा में जो है कोई आचार्य होते हैं तो उनके कई शिष्य होते हैं, है ना, तो फिर उन शिष्यों की भी जो है और शिष्य होते हैं। तो ये कैसा, ये किस प्रकार से है, जैसे कि वृक्ष की एक शाखा निकली तो शाखा की कई उप शाखाएं निकलती हैं, फिर उनसे भी जो है और शाखाएं निकलती हैं, है ना। तो इस तरह से ये बहुत विस्तार, इस चैतन्य वृक्ष का जो विस्तार है वो अनंत है, अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार है, संख्या नहीं है इसलिए। कितनी शाखाएं और फिर उनकी उप शाखाएं, फिर प्रति शाखाएं, कितनी कितनी शाखाएं हैं। लेकिन इसमें इन्होंने, कृष्णदास कविराज ने वर्णन किया है कि मुख्य शाखा जो है नित्यानंद प्रभु हैं, चैतन्य वृक्ष की बहुत मोटी शाखा नित्यानंद प्रभु है। और नित्यानंद प्रभु जो शाखा है उनकी जो है एक सबसे मोटी शाखा कौन है? वीरभद्र गोस्वामी, उनके ही पुत्र वीरभद्र गोस्वामी, जिनकी अनेक शाखाएं उप शाखाएं हैं, उनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वीरभद्र गोस्वामी मतलब कितना प्रचार किया इन्होंने, वीरभद्र गोस्वामी ने कितना प्रचार किया कृष्ण भावनामृत का, है ना, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो कितनी इस तरह से शाखाएं बन गई, उसकी बहुत सी शाखाएं बन गई। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तारे ओप शाखा जत असंख्य तार लेखा। इसलिए तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखा है, वीरभद्र गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र और जाह्नवी देवी के शिष्य थे। नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं है? और जाह्नवी देवी के शिष्य हैं। इसका मतलब माता कौन है इनकी? है वसुधा। नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां हैं, वसुधा और जाह्नवी, है ना। तो जाह्नवा देवी के तो शिष्य हैं, तो फिर पुत्र वसुधा के हैं, नित्यानंद प्रभु से उन्होंने जन्म लिया है, वसुधा माता से जन्म लिया है, तो जाह्नवा देवी के शिष्य हैं। इनकी असली माता वसुधा थी, हाँ लिखा तो है, इनकी असली माता वसुधा थी। गौर गणोदेश दीप का 67 में इन्हें क्षीरोदकशायी विष्णु के अवतार बतलाया गया है। देखिए कितना मतलब आश्चर्य की बात है, क्षीरोदकशायी विष्णु के अवतार है, है ना। और क्षीरोदकशायी विष्णु ने ही अपना विस्तार किया है सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में, है ना। तो ये उनका ही वो है, ये सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। कौन? वीरभद्र गोस्वामी, क्षीर समुद्र में जो शयन करते हैं, है ना। इस तरह वीरभद्र गोस्वामी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, अभिन्न है, विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व है, है ना। तो जितने भी विष्णु तत्व हैं कृष्ण से निकलते हैं, है ना, तो उनमें बराबर शक्तियाँ हैं। जैसे एक दिए से दूसरे दिए, दूसरे तीसरे दिए, उसी प्रकार जितने भी दिए हैं सब में बराबर प्रकाश है, हैं। लेकिन पहला दिया कहा जाता है, भाई ये पहला दिया है, है ना, तो कहने के लिए है पहला दिया, लेकिन जितने दिए हैं समय बराबर। उसी प्रकार से कृष्ण आदि पुरुष हैं, लेकिन उनसे जितने भी विष्णु के विस्तार हुए हैं समय बराबर बराबर शक्तियाँ हैं, है ना। सब माया के स्वामी हैं, है ना, और सब जो है वैकुंठ प्रदान करने वाले हैं, सबके अलग अलग वैकुंठ हैं, है ना। तो यहाँ लिखा है आगे, हुगली जिले में झामटपुर गांव में वीरभद्र गोसाई के शिष्य यदुनाथ आचार्य की दो पुत्रियां थीं। एक असली पुत्री जिसका नाम श्रीमती था और दूसरी पोष्य पुत्री जिसका नाम नारायणी था। इन दोनों की शादियां हुई थीं। किससे शादियां हुई थीं? वीरभद्र गोस्वामी से इनकी शादियां हुई थीं, जिसका उल्लेख भक्तनी रत्नाकर के 13वें तरंग में हुआ है। वीरभद्र गोस्वामी के 3 शिष्य थे जो उनके पुत्रों के तौर पर विख्यात हैं, तो पुत्र माने जाते हैं, लेकिन रूपा का कहना है कि वो शिष्य हैं, पुत्र नहीं है। वीरभद्र गोस्वामी के कोई पुत्र नहीं हुए, लेकिन अन्यत्र कहा गया कि पुत्र हैं उनके, है ना। लेकिन इसमें प्रभुपाद कुछ कारण बताएंगे कि पुत्र क्यों नहीं है। तो तीन पुत्र या तीन पुत्र के तौर पर विख्यात हैं, गोपीनाथ वल्लभ, रामकृष्ण तथा रामचंद्र। सबसे छोटा शिष्य रामचंद्र शांडिल्य गोत्र का था और उसका कुल नाम बटब्याल था। उसने अपने परिवार को खड़दह में बसाया और इसके सदस्य खड़दह के गोस्वामी कहलाते हैं। सबसे बड़ा शिष्य गोपीजन वल्लभ बर्धमान जिले के मानकर रेलवे स्टेशन के निकट लता नामक गांव का निवासी था। द्वितीय शिष्य रामकृष्ण मालदह के निकट गयेशपुर गांव में रहता था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि चूंकि ये तीनों शिष्य भिन्न भिन्न गोत्रों के थे और उनके कुल नाम तथा निवास स्थान भी भिन्न थे, अतः उन्हें वीरभद्र गोस्वामी के असली पुत्र नहीं माने जा सकता। रामचंद्र के 4 पुत्र थे जिनमें राधा माधव सबसे बड़े थे और उनके तृतीय पुत्र का नाम यादवेंद्र था। यादवेंद्र के पुत्र नंद किशोर, उनके पुत्र निधि कृष्ण, उनके पुत्र चैतन्य चांड, उनके पुत्र कृष्ण मोहन, उनके पुत्र जगन मोहन, उनके पुत्र ब्रजनाथ और उनके भी पुत्र श्यामलाल गोस्वामी थे। वीरभद्र गोस्वामी के वंशजों की वंशावली है जिसका उल्लेख भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया है। अच्छा, श्यामलाल मेरे ख्याल से वही हैं क्या जिनकी बहुत सी टीकाएं हैं ना मिलती हैं श्यामलाल के द्वारा? श्यामलाल गोस्वामी, उन्होंने काफ़ी टीकाएं लिखी हैं, जो गोपाल चंपू की टीका लिखी है, आनंद वृंदावन चंपू की टीका लिखी है श्यामलाल, श्यामलाल हकीम। हाँ, तो यही तो हैं काफ़ी, मतलब इसमें वंश परंपरा में काफ़ी बाद में आया श्यामलाल गोस्वामी, हो सकता है वही हों, फिर जो भी हों। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये कहना है कि वीरभद्र गोस्वामी के ये पुत्र परंपरा नहीं है, शिष्य परंपरा है, है ना। और अगर कुछ लोग दावा करते हैं कि भाई हम उनके वंशज हैं, हम वीरभद्र गोस्वामी के वंशज हैं या नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं, तो प्रभुपाद का ये कहना है कि अगर आप वंशज हैं तो उन्हीं की तरह आप प्रचार करिए, कि केवल अपने को हम वंशज कह करके आप लोगों से सम्मान प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये उचित नहीं है, अगर आप असली वंशज हैं उनके तो उन्हीं की तरह आप प्रचार करिए, है ना। तो ये जो है प्रभुपाद का ये दावा है। तो इसके बाद फिर प्यार है, अगली प्यार है, यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे किंतु उन्होंने अपने को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, मतलब भगवान के रूप में नहीं। और महान भक्त का मतलब क्या है? उतना ही छोटा बने, जितना वो अपने को छोटा समझे उतना ही तो बड़ा भक्त है ना। तो वीरभद्र गोस्वामी ने अपने को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, इसका मतलब अपने को सबसे छोटा से छोटा दास के दास का दास के रूप में प्रस्तुत किया, है ना। यही समझना कि अपने को महान भक्त रूप में प्रस्तुत किया तो अपनी पूजा कराते थे कि चलो मैं बड़ा भक्त हूँ मेरी पूजा करो, ये नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है अपने को महान भक्त रूप में प्रस्तुत किया का मतलब अपने को सबसे नीचा प्रस्तुत किया कि मैं सबसे नीचा हूँ, सबसे छोटा हूँ, दास के दास का दास, ये महान भक्त हैं। तो ये योग्यता भी भगवान के अंदर ही है कि सबसे छोटे इतने छोटे बन जाते हैं, उतने उनसे छोटा कोई हो नहीं सकता है, है ना। क्योंकि महतो महियान अड़ो रणियान, तो भगवान बड़े से बड़े जब बनते हैं तो उतना बड़ा कोई बन नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। और भगवान जब छोटे बनते हैं तो इतने छोटे बनते हैं उतना छोटा भी कोई नहीं बन सकता, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो आप किसी भी मामले में भगवान की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो वीरभद्र गोस्वामी जो है भगवान है, है ना, इन महान भक्ति रूप उन्होंने प्रस्तुत किया, इसके अंदर अपने को बहुत छोटा प्रस्तुत किया, है ना। किंतु वे वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे, यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदर्शों से परे हैं, भगवान है, सारे वैदिक आदर्शों से परे हैं, परंतु वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते थे क्योंकि भक्त है। तो अपने को भक्ति रूप में प्रस्तुत किया है ना। ईश्वर हैया कहाय महाभाग्यवत, वेद धर्म अतीत हैया वेद धर्मे रत। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति रूपी भवन के मुख्य स्तंभ है। भक्ति का एक वृक्ष चैतन्य महाप्रभु ने जो मतलब ये वृक्ष मतलब जो बनाया है वो भक्ति का वृक्ष है जिसमें प्रेम रूप फल उत्पन्न होते हैं। और कभी भक्ति का भवन भी कहा जाता है कि भक्ति का भवन है। चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्ति का भवन बनाया है ना। तो उस भवन के अंदर आप सब लोग रह सकते हैं सुरक्षित है ना। भौतिक संसार जो है दावानल है ना, जहाँ की अग्नि का जो है मतलब कुछ भी ताप नहीं आएगा भवन के अंदर। तो ऐसा भवन है एसी वाला भवन है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो भवन बनाया है वो ऐसा है एसी वाला भवन है जिसमें कि कोई मतलब संसार दावानल की गर्मी नहीं आएगी है ना। तो उस भवन के ये कौन है मुख्य स्तंभ है, मुख्य स्तंभ है क्योंकि तो भवन जो है स्तंभ के ऊपर टिका रहता है। बहुत बड़ा होता है तो बीच में खंभे होते हैं, तो कोई बड़ा बीच का जो खंभा होता है उसके ऊपर भार होता है, पूरे भवन का भार होता है। तो ये वो मुख्य स्तंभ है। वे अंतःकरण से जानते थे कि वे भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते थे, किंतु बाहर से वे गर्व रहित थे। इतनी योग्यता भगवान की है कि स्वयं भगवान होते हुए भी उनके अंदर जरा भी गर्व नहीं है भगवान होने का। अंतरे ईश्वरे चेष्टा बाहिरे निर्दम्भ, चैतन्य भक्ति मंडपे तेहो मूल स्तंभ। देखिए कितने सुंदर शब्द रचना है। अंतरे ईश्वर चेष्टा, अंतर में ईश्वर की चेष्टा है, और बाहिरे निर्दम्भ, बाहर से कैसे हैं निर्दम्भ, दम्भ जरा भी नहीं है दिखावा करें कि लोग मुझे ईश्वर जाने मैं कितना बड़ा ईश्वर हूँ मैं दिखाऊं सबको। तो बाहरे निर्दम्भ, अंतरे ईश्वरे चेष्टा बाहरे निर्दम्भ, चैतन्य भक्ति मंडपे तेहो मूल स्तंभ। चैतन्य रूपी भक्ति मंडप के ये मूल स्तंभ है ना। ये है इसके बाद है श्री वीरभद्र गोस्वामी की महिमामयी कृपा से अब सारे विश्व के लोगों को चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्होंने ही ये परिपाटी शुरू की चैतन्य नित्यानंद के नामों के कीर्तन की है ना। चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने तो बिल्कुल मना किया कि मेरे नाम का कीर्तन नहीं करना है ना। और कोई करे तो कैसे करते थे ऐसे है ना। तो फिर ये पंचतत्व मंत्र फिर कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया? न तो चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, ना अद्वैताचार्य ने, ना गदाधर पंडित ने, ना श्रीवास ठाकुर ने, किसी ने भी शुरू नहीं किया। कि चैतन्य महाप्रभु का इतना कला विरोध था कि कोई शुरू नहीं कर सकता था, लेकिन किसने शुरू किया? वीरभद्र गोस्वामी ने शुरू किया है ना। तो उन्होंने जो है मतलब शुरू किया, लेकिन स्वयं अपना नहीं कीर्तन कराया। ये भी भगवान है, इनका भी कीर्तन होना चाहिए लेकिन इन्होंने अपना कीर्तन नहीं है ना। तो ये है कि अद्यापि जा हार कृपा महिमा हईते, चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। अतएव मैं वीरभद्र गोस्वामी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कौन कह रहे हैं? अतएव मैं वीरभद्र गोस्वामी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अतएव मैं वीरभद्र गोस्वामी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी बड़ी अभिलाषा का सही ढंग से मार्गदर्शन हो सके। अरे वो अभी मुझे मिला है, आज का दिन जो है मुझे मिला है इनके विषय में बोलने का। और ये प्रार्थना भी मेरी भी प्रार्थना है कि मेरा भी काम रुका हुआ है, श्री भगवान ने कहा मेरा भी काम रुका हुआ है, तो मेरे लिए भी ये प्रार्थना बहुत लागू हो रही है, क्योंकि बिल्कुल अब काम रुक गया है और बिल्कुल काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है मेरा। श्री वीरभद्र गोसाईर लयनु शरण, जहाँ प्रसाद है अभिष्ट पूरन। तो इस तरह से इसमें कुछ जो लिखा था वो मैंने पढ़ के सुनाया। अब गौड़ी वैष्णव चरितामृत में भी कुछ इनके विषय में है, तो वो भी जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद कुछ और भी अन्यत्र है। श्री वीरचंद्र प्रभु या वीरचंद्र गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की दूसरी पत्नी वसुधा देवी के पुत्र तथा श्री जाह्नवी देवी के शिष्य थे। कवि कर्णपुर के कथनानुसार ये क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार थे। ये विष्णु तत्व अर्थात स्वयं भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, इसलिए वैष्णव कैलेंडर में इनका तिरुभाव दिवस नहीं आता है। आविर्भाव दिवस आता है, तिरुभाव दिवस नहीं आता है, है ना? क्यों? विष्णु तत्वों का तिरुभाव नहीं मनाया जाता है, है ना? विष्णु तत्वों का तिरुभाव नहीं मनाया जाता है, तो इनका आविर्भाव तो साल में केवल एक ही दिन आता है इनको याद करने का। तो हमें आज विशेष इनकी कृपा लेनी चाहिए, आज बहुत विशेष दिन है ना? तो इसमें लिखा है कि कवि कर्णपुर के कथनानुसार ये क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं। ये विष्णु तत्व अर्थात स्वयं भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु के सनातन भगवत प्रेम रूप वृक्ष की उच्चतम शाखा नित्यानंद प्रभु, सबसे ऊंची शाखा कृष्ण प्रेम का जो वृक्ष है चैतन्य महाप्रभु, तो उसकी उच्चतम शाखा सबसे ऊंची शाखा नित्यानंद प्रभु है। और उनकी जो है उससे उसकी सबसे बड़ी शाखा, बृहद शाखा, मोटी शाखा कौन है? वीरचंद्र प्रभु हैं। यद्यपि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इन्होंने स्वयं को एक भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, और यद्यपि परमेश्वर समस्त वैदिक विधानों के परे हैं, इनके ऊपर कोई विधि निषेध लागू नहीं होता कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, वेदों के अनुसार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इनके ऊपर भगवान है, कोई वेदों के विधान इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। यद्यपि परमेश्वर समस्त वैदिक विधानों के परे हैं, तथापि इन्होंने वैदिक नियमों का कठोरता से पालन किया है, कठोरता से पालन किया है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति भवन के प्रमुख स्तंभ है। भक्ति भवन के है ना, वही बात बताई गई है ना। तो वास्तव में क्षीरोदक्षाय विष्णु ही धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, वो तो बहुत कम आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं भगवान कृष्ण, लेकिन हमेशा असुरों का संहार और धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा का कार्य तो ये करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु ही करते हैं, ये सब जितने अवतार होते हैं। तो श्री वीरचंद्र की अपार कृपा द्वारा ही विश्व भर के लोग चैतन्य एवं नित्यानंद के नामों का कीर्तन करते हैं। अतः मैं श्री वीरचंद्र प्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत, ये चैतन्य चरितामृत के जो प्यारे हैं उन्हीं को इसमें उद्धृत किया गया है। जब वीरचंद्र प्रभु ने वृंदावन में आगमन किया, तब समस्त जन इनके दर्शनार्थ आए हैं। वे इनके दर्शन पाकर हर्षोत्फुल्ल हो गए। वीरचंद्र प्रभु द्वारा प्रकट भक्ति के दर्शन कर प्रत्येक व्यक्ति भाव विह्वल हो उठा। जब वृंदावन में जब ये आए, वीरचंद्र प्रभु जब वृंदावन में आए, तो वृंदावन वासी भाव विह्वल हो गए इनकी भक्ति देख करके। इन्होंने श्री मदन मोहन, श्री राधा गोविंद और श्री राधा गोपीनाथ के दर्शन किए। ये गौड़ी वैष्णवों के आचार्य विग्रह हैं, मदन मोहन और राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ के दर्शन किए। श्री जाह्नवी देवी की आज्ञा पर इन्होंने ब्रजमंडल की यात्रा की। अपनी विस्तृत तीर्थ यात्रा के पर्यंत इन्होंने दिव्य प्रेम के अनेक अद्भुत और विस्मयकारी लीलाएं प्रकट की। भक्ति रत्नाकर, इनकी पुष्प समाधि 64 समाधि पीठ में है, तो इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये गौर गणोदेश दीपिका में इनके विषय में जो लिखा हुआ है उसमें कुछ विस्तार से बातें हैं, तो इनको हम लोग सुनेंगे। संकर्षण से यो व्यूहा पयोधि साई नाम कहा स एव वीरचंद्रो भू चैतन्या भिन्न विग्रह अमुम प्राविशताम कार्यात सहजो निषट मुल्मक। श्री संकर्षण के क्षीरोदक्षाय अर्थात क्षीरोदक्षाय नाम विष्णु अब श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। श्री वीरचंद्र प्रभु हैं, नित्यानंद के पुत्र हैं। निषठ और उन्मुख नामक दो भाइयों ने भी इनमें प्रवेश किया है। बलराम जी के जो पुत्र हुए, बलराम जी के पुत्र हुए हैं, कहीं कहीं बताया जाता है कि बलराम जी के कोई पुत्र नहीं हुए, लेकिन कहीं पर बताया जाता है कि बलराम जी के पुत्र हुए, दो पुत्र हुए, उनके नाम थे निषट और उल्मुख, है ना। तो वही दोनों जो है इनके शरीर में भी मतलब निवास करते थे। तो तीन व्यक्ति हैं वीरचंद प्रभु के शरीर में, तीन व्यक्ति हैं, एक तो शिवदक साय विष्णु हैं और बलराम जी के दो पुत्र निषट और उल्मुख, ये भी जो है इनके शरीर में है, है ना। तो बलराम जी नित्यानंद हैं, तो बलराम जी के पुत्र वो नित्यानंद प्रभु के पुत्र बने हैं, तो चूंकि नित्यानंद प्रभु के एक ही पुत्र हुआ है, तो वो दोनों पुत्र भी इनके शरीर में प्रविष्ट हुए। तो बलराम जी से जो विस्तार होता है, संकर्षण, संकर्षण से कारण समुद्र साई, फिर उनसे विस्तार होता है गर्भ समुद्र साई, फिर उनसे विस्तार होता है क्षीर समुद्र साई, और फिर शेषनाग, इन पांच रूपों में श्री कृष्ण की सेवा हेतु अपनों को प्रकट करते हैं बलराम जी। बलराम जी अपने को पांच रूपों में प्रकट करते हैं। इनका जो क्षीरोदक साई विष्णु स्वरूप है, वो चैतन्य लीला में श्री वीरचंद्र प्रभु हैं। तो वीरचंद्र प्रभु नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं, बलराम जी के दो पुत्र उल्मुख और निषट कभी वीरचंद्र में आवेश है। श्री संकर्षण स्वयं रूप से वस्त्र आसन सैया द्वारा प्रभु की सेवा करते हैं। कारण समुद्र साई सृष्टि हेतु माया की ओर दृष्टि डालते हैं। ये बलदेव जी की जो है विस्तार है। कारण समुद्र साई विष्णु है, माया की ओर दृष्टि डालते हैं तो माया छुपित होती है और यहीं से सृष्टि का बीजारोपण होता है। अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करके अनेक रूप से प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में कारणोदक साई विष्णु अपना विस्तार करते हैं। किस रूप में? गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक साई विष्णु होते हैं और अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर देते हैं और उस जल के अंदर शयन करते हैं, जो गर्भ समुद्र कहलाता है, गर्भोदक साई विष्णु। इन्हीं की नाभि से कमल और ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु है और प्रत्येक गर्भोदक साई विष्णु से कमल उत्पन्न होता है और ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से सृष्टि का पालन, स्थिति और प्रलय करते हैं। इन गर्भोदक साई विष्णु के एक और अंश हैं जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, और ये क्षीर समुद्र साई ही परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान रहते हैं। यही क्षीर समुद्र साई चैतन्य लीला में वीरचंद्र प्रभु के नाम से नित्यानंद प्रभु और माता वसुधा के पुत्र हैं। नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे अभिराम गोस्वामी। अब सुनिए बड़ी रोचक घटना है। नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद हैं अभिराम गोस्वामी, जो रामदास या राम या अभिराम ठाकुर इन सब नामों से विख्यात हैं। इतने तेजस्वी थे कि यदि आप श्री विग्रह और शालिग्राम को प्रणाम करते तो फट जाते। अगर असली उनमें शक्ति नहीं है कोई श्री विग्रह में या जो है शालिग्राम अगर असली नहीं है और वो प्रणाम करें तो फट जाएंगे। अभिराम ठाकुर मतलब एक ये था, मतलब टेस्ट करने, टेस्टिंग मशीन अगर असली शालिग्राम शिला नहीं है और ये प्रणाम करें तो फट जाएगी शालिग्राम शिला, है ना। तो उसे टेस्ट हो जाता था कि असली शालिग्राम नहीं है, नकली शालिग्राम शिला है, है ना। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को भी प्रणाम करें, है ना, और वो अगर इनके इस योग्य नहीं है कि ये प्रणाम, मतलब प्रणाम स्वीकार करने योग्य नहीं है, इनसे उसका स्तर जो है ऊंचा नहीं है, तो वो भी मर जाएगा, है ना। तो बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है। तो इसलिए भक्त लोग जो है क्या करते हैं कि भाई कहीं मतलब जो मुझे प्रणाम कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे वो बड़ा हो, वो मुझे प्रणाम करे तो जल्दी वो भी प्रणाम करते हैं, जल्दी प्रणाम करते हैं। कोई अपने से बड़ा अगर अपने को प्रणाम करे और मैं उनके प्रणाम देने के योग्य नहीं हूँ, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, तो मुझे तुरंत प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो अपनी सुरक्षा इसी में है ना। तो कोई अगर मतलब अपने को सोचे कि हाँ अभिराम ठाकुर मुझे प्रणाम कर रहे हैं, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, तो उसी समय ही हरी बोल हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु को पहले एक एक करके सात पुत्र हुए, नित्यानंद प्रभु को एक एक करके सात पुत्र हुए, अभिराम के प्रणाम करते ही क्रमशः सातों का निधन हो गया, सातों मर गए, है ना। कि अभिराम ठाकुर का प्रणाम स्वीकार करने के लिए कौन होना चाहिए, स्वयं भगवान होना चाहिए, स्वयं भगवान ही उनका प्रणाम स्वीकार कर सकते हैं, हैं। कोई जीव तत्व हो तो मर जाएगा, हैं, क्योंकि अभिराम ठाकुर बलदेव जी के सखा हैं, है ना। तो कोई सामान्य व्यक्ति तो मतलब उनके प्रणाम को स्वीकार कर नहीं सकता है। तो सातों पुत्रों का निधन हो गया, नित्यानंद प्रभु के सात पुत्र हुए और सातों पुत्र मर गए, तो ये आते थे प्रणाम करते थे और बालक मर जाता था, है ना। जब इन्होंने वीरचंद्र के जन्म का समाचार सुना तो ये घर पहुंचे। तो इसमें तो लिखा हुआ है लेकिन मैंने और सुना है कि हुआ क्या कि इनको बुलाया नहीं गया। जब वीरचंद्र का जन्म हुआ तो सब लोग बहुत डर गए कि अभिराम ठाकुर को जो है नहीं बुलाना, है ना, बहुत खतरनाक है। अब आठवां पुत्र हुआ है नित्यानंद प्रभु को, तो वो तो मार देंगे, प्रणाम करेंगे तो मार देंगे, है ना। तो बुलाया नहीं गया, तो जब नहीं बुलाया गया तो उनको पता चला कि भाई बालक हुआ है, तो बोले मुझे नहीं बुलाया गया है, तो मैं तो ग्वाला हूँ, मैं तो बिना बुलाया जाता हूँ। कोई ब्राह्मण होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो भाई मुझे नहीं बुलाया तो मैं क्यों जाऊँ, है ना, लेकिन मैं तो ग्वाला हूँ तो मैं तो जाऊँगा। तो चल पड़े। अब जब चल पड़े तो गंगा के इस पार आए, तो यहाँ पर जितने भी नाविक थे तो उनको भी बता दिया कि भाई अभिराम ठाकुर को गंगा पार नहीं आने देना है, है? तो इन्होंने जब बात किया कि भाई हमको जो है गंगा पार करना है, तो बोले कौन है आप, बोले अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर अपने नौका डुबो दी उन्होंने पानी में, नहीं आपको आपको जो है गंगा पार नहीं करने दिया जाएगा। तो बोले अच्छा, तो गंगा पार हमको नहीं करने दोगे, तो देखो मैं कैसे गंगा पार करता हूँ। तो अपनी धोती उन्होंने पानी में डाली, है? तो पानी में तैरने लगी, उसी के ऊपर बैठ करके गंगा पार कर ली। अब गंगा पार आ गए तो गांव में आ गए तो सब लोग डर गए कि आ गए, ये तो आ गए, है ना। नित्यानंद प्रभु ने कहा अच्छा आप आ गए, आपको तो नहीं बुलाया था। तो बोले हमको नहीं बुलाया, तो हम तो ग्वाले हैं, हम तो आएंगे, बिना बुलाए भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा तो भोजन करो। नित्यानंद प्रभु बोले अच्छा भोजन करो। तो किसी तरह से मतलब बच्चे से दूर रखने के लिए इनको बैठा दिया कि भोजन करो। तो भोजन किया, तो जितना भोजन था गांव भर का भोजन गांव वासियों को जो देना था वो सब खा गए, पूरा भोजन खा लिया। नित्यानंद प्रभु बोले तुम क्या करते हो, जितना भोजन सब खा लिया तुमने। तो बोले हम ग्वाले हैं, हमको जितना खाना है उतना खाएंगे, क्या रोक टोक है कुछ खाने में। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि 300 आदमियों का भोजन रखा था यहाँ, अब वो क्या खाएंगे, तुमने सब खा लिया। तो बोले देखो सब रखा हुआ है, तो जब देखो तो सब रखा था ज्यों का त्यों। सब रखा था। तो फिर बोले कि भाई अब बालक को दिखाओ, बालक को दिखाओ। नित्यानंद प्रभु बोले क्यों बालक को देखना चाहते हो, तुमने 7 बालक तो मार दिए हैं, तो तुम बच्चे को मारने के लिए आते हो। तो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपके वंश में जो योग्य पुत्र हो उसकी जांच करने के लिए आता हूँ, मेरा इरादा बच्चे को मारना नहीं है, आप बच्चे को लाओ सामने। तो वसुधा देवी की गोद में जो है बालक बैठा हुआ था, तो उन्होंने जो है प्रणाम किया और खड़े हुए, तो बालक हंसा। फिर दूसरी बार प्रणाम किया तो बालक और हंसा। फिर तीसरी बार प्रणाम किया, बालक और हंसा। बोले हाँ ये बालक आपके वंश के अनुकूल है, ये तो मैं जांच करने के लिए आता हूँ। है ना। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जब इन्होंने वीरचंद्र के जन्म का समाचार सुना तो निताई चांद के घर पहुंचे और कहा मैं वीरचंद्र को प्रणाम करूंगा। माता वसुधा बहुत भयभीत होती, बालक की माता बहुत भयभीत होती। अभी राम ने दर्शन करते ही इन्हें प्रणाम किया, हाँ बालक वीरचंद्र ने उनके प्रणाम को स्वीकार कर लिया, सहन कर लिया, केवल सहने के बल्कि हंसा, बालक हंसा भी। अभी राम जान गए कि ये गौरांग महाप्रभु के ही विस्तार हैं, मतलब विष्णु तत्व हैं ये, है ना। वीरचंद्र ने अपनी माता जाह्नवा से ही गुरु मंत्र दीक्षा ग्रहण की। इनकी दो पत्नियां थी, श्रीमती लक्ष्मी एवं श्री नारायणी, जो झामटपुर निवासी श्री यदुनंदन आचार्य की कन्याएं थीं। इसमें प्रभुपद यदुनाथ आचार्य लिखा है, यहाँ यदुनंदन आचार्य लिखा है, जो भी हो। इनके तीन पुत्र हुए, वही बात है, श्री गोपीजन वल्लभ, श्री रामकृष्ण तथा श्री रामचंद्र, और एक कन्या जिसका नाम था भुवन मोहिनी। इस प्रकार इनके वंशधर बंगाल, कलकत्ता एवं श्री वृंदावन में सर्वत्र छा गए और महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। श्रृंगार भट्ट वृंदावन के निवासी गोस्वामी वृंद सब इन्हीं के वंशधर हैं। इन्होंने समग्र श्रीमद् भागवत का मर्मानुवाद किया, जो दो भागों में मुद्रित हुआ था। श्री वीरभद्र गोस्वामी के अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। एक बार आप विष्णुपुर में पधारे, विष्णुपुर, ये दीर्घ विष्णुपुर की घटना बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ के राजा थे वीर हमीर, है ना, और उन्होंने सब पुस्तकें चुरवा ली थी, गोस्वामियों की पुस्तकें चुरवा ली थी, तो वीर हमीर राजा, तो ये जब वहाँ पधारे तो यहाँ के राजा वीर हमीर ने इनका अति आदर सम्मान किया और अपने सौभाग्यों की सराहना करते हुए इन्हें अपने भवन में ठहराया। तो जब ये उनके घर में आए थे, राजा वीर हमीर के महल में आए थे, उस समय एक घटना घट चुकी थी। कौन सी घटना? ये तीनों श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, ये जो है, जब वृंदावन से गौर देश में जाते हैं इन गोस्वामियों के ग्रंथों को लेकर के, कि इनकी और नकल करवा करके और इनका वितरण कराना है इन पुस्तकों का, तो इसी बीच में राजा वीर हमीर ने चुरवा ली थी। और फिर बड़ी लंबी कथा है कि कैसे फिर ये पुस्तकें वापस प्राप्त हुई और राजा वीर हमीर भी श्रीनिवास आचार्य के अनुगत शिष्य होकर के वैष्णव बन गए, है ना। तो अब ये जो है राजा वीर हमीर के महल में जब ये आए, कौन आए? वीरचंद्र प्रभु आए। वीरचंद्र प्रभु आए तो उसे सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने ही भवन में ठहराया राजा ने। एक तो अतिथि भवन होता है, राजा के कई महल होते हैं, अतिथि भवन में ठहराते हैं, अपने ही भवन में ठहराया। अपने भवन में क्यों ठहराया? अपना सौभाग्य, अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए अपने भवन में ठहराया। किनको? वीरचंद्र प्रभु को। श्रीनिवास आचार्य ने जब सुना कि गोस्वामी वीरभद्र प्रभु विष्णुपुर में आए हैं, तो अति विनय पूर्वक श्री आचार्य ने अपने घर पर लाए। श्रीनिवास आचार्य का अलग घर था, क्योंकि राजा के गुरु हैं, तो राजा के घर से श्रीनिवास आचार्य अपने घर में ले आए, अपने महल में, है ना। तो श्रीनिवास आचार्य का महल भी कम नहीं था राजा के महल से, तो राजा के गुरु का महल थोड़ी राजा के महल से कम होगा। तो श्रीनिवास आचार्य ने अपने महल में इनको ले आए और मिष्टान सहित वीरचंद्र प्रभु को जलपान कराया और रसोई तैयार करने के लिए रसोई में जाने की आज्ञा मांगी। श्रीनिवास आचार्य ने आज्ञा मांगी कि मैं अब आपके लिए भोजन बनाने के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो मैं रसोई बनाऊँ। तो वीरचंद्र प्रभु बोले, तुम्हारी छोटी पत्नी आज रंधन करेगी, तुम नहीं करोगे, तुम्हारी छोटी पत्नी आज रंधन करेगी, रंधन मतलब भोजन बनाएगी। तो श्रीनिवास आचार्य ने जब अपनी पत्नी पद्मावती को प्रभु की आज्ञा सुनाई तो आनंद से फूली न समाई, उसको तो बहुत आनंद हुआ कि तो मुझे भगवान जो है मुझे सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, है ना, तो फूली न समाई। उसने सामने आकर प्रणाम किया और फिर रसोई बनाने के लिए चली गई। रसोई तैयार होने पर श्री भगवान को भोग अर्पण किया गया। श्री वीरचंद्र ने अपनी दाहिनी ओर श्रीनिवास आचार्य को बिठाया और आनंद पूर्वक प्रसाद खाने लगे। भोजन करते जाते थे और परस्पर श्री गौर लीला और कृष्ण लीला का वर्णन करते जाते थे। तो ये विधि है भोजन करने की, कि भोजन करते करते कृष्ण कथा और गौर कथा का वर्णन करते जाते हैं। भोजन के बाद वीरचंद्र, अच्छा नहीं क्षमा करना, भजन के बाद श्रीनिवासाचार्य ने वीरचंद्र गोस्वामी प्रभु को फूलों की माला, चंदन और तांबूल अर्पण किया। तो वीरचंद्र गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य से छोटी पत्नी पद्मा की संतान के संबंध में पूछा। किसने पूछा? वीरचंद्र गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य से, तुम्हारी छोटी पत्नी के कितने बच्चे हैं? श्री आचार्य बोले, प्रभो आप तो अंतर्यामी हैं, मैं क्या कहूँ। बोले आप तो अंतर्यामी हैं, मैं क्या कहूँ। इसके गर्भ से लंगड़ी व कुबड़ी संतान होती है जो जीवित नहीं रहती है। इसके गर्भ से लंगड़ी कुबड़ी संतान होती है और जीवित नहीं रहती है ना। हाँ, तो वीरचंद्र गोस्वामी हंस पड़े और बोले, आचार्य अब इसका जो पुत्र होगा वो अति सुंदर होगा। बोले अब इसका जो पुत्र होगा वो अति सुंदर होगा, इसके वंशधर समस्त देश में व्याप्त होकर वैष्णव धर्म का प्रचार करेंगे, है ना। आज से इसका नाम हम गौरांग प्रिया रख रहे हैं। पद्मावती से नाम दे दिया गौरांग प्रिया, है ना। उसी को ही मतलब प्रसाद बनाने के लिए लगाए थे ना, इसका सौभाग्य हो जाए, है ना। इतना कहकर अपना प्रसादी पान उसे प्रदान किया। आप अपने प्रसादी पान के द्वारा ही ऐसी अद्भुत शक्ति का संचार किया कि समय पर अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जो गोविंद गति नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीखंड में ठाकुर नरहरि का अंत्येष्टि महोत्सव जब मनाया जाता था, श्रीखंड में नरहरि सरकार बहुत बड़े वैष्णव हुए, चैतन्य महाप्रभु के संगी थे नरहरि सरकार, है ना। तो उनका जब तिरुभाव हुआ था तो वो उत्सव मनाया जा रहा था, उनकी तिरुभाव उत्सव मनाया जा रहा था। तो वीरचंद्र गोस्वामी वहाँ पर आए, सबने श्री नाम संकीर्तन प्रारंभ किया, सबके बीच में नाच रहे थे वीरचंद्र गोस्वामी। हरि बोल, हरि बोल, जाग रहे हैं। सबके बीच में कौन नाच रहे थे? वीरचंद्र गोस्वामी नाच रहे थे। अद्भुत नृत्य था, समस्त प्रेम के लक्षण से उन विभूषित नृत्य था उनका। असंख्य लोग उस नृत्य को देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे, भगवान नृत्य करेंगे तो कैसा होगा, भक्तों के बीच में भगवान नृत्य कर रहे हैं, वीरचंद्र भगवान नृत्य कर रहे हैं। वहाँ एक रामाई नाम का व्यक्ति भी उपस्थित था जो जन्म से अंधा था, जन्म से अंधा था। नाम ध्वनि सुन सुनकर वो आनंद ले रहा था, दोनों हाथों से अपने नेत्रों को पकड़कर हाय हाय करने लगा, हाय हाय मैं कृष्ण संकीर्तन नृत्य नहीं देख पाता। पहली बार उसको जो है इस बात का दुख हुआ कि मेरे आंखें नहीं हैं, इतना जीवन में जो है पहली बार उसको इतना कष्ट हो रहा है कि मैं नृत्य नहीं देख पा रहा हूँ। अद्भुत जो संगीत और जो ध्वनि है कीर्तन की, वो कानों से तो सुन रहा है लेकिन उसको जो है लग रहा है कि वो नृत्य भी कैसा होगा। अगर इतना सुंदर अगर संगीत और ध्वनि है कीर्तन की तो नृत्य कैसा होगा। तो वो आँखों को पकड़ करके बार बार बोल रहा है, हाय हाय मैं कृष्ण संकीर्तन नृत्य नहीं देख पाता, किस अपराध से विधाता ने मेरे नेत्र हरण कर लिए हैं। ऐसा कह कहकर चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, बाकी सब लोग हर्ष में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और वो बेचारा चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है कि मेरी आंखें नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा। वो चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। परम कृपालु श्री वीरचंद्र ने जब उसकी ये दशा देखी तो उनसे रहा ना गया। नृत्य करते करते उसी के पास पहुंचे, उसके नेत्रों पर अपने हाथ को फेरा, उसके नेत्रों पर, जन्म से अंधा था, सोचिए जन्म से अंधा था, उसके नेत्र पर अपने हाथ को फेरा। बोले, रामाई देख तो कैसा नृत्य गान हो रहा है। इतना कहते रामाई के नेत्र खुल गए और वो जन्म का अंधा सब कुछ देखने लगा। समस्त भक्तों के आनंद की सीमा ना रही। इस प्रकार प्रभुपाद ने मतलब वीरचंद्र गोस्वामी ने अनेक जीवों को प्रेम भक्ति प्रदान करके उनका उद्धार किया। तो कुछ हमने वीरचंद्र गोस्वामी के विषय में चर्चा की। अब कार्तिक का जो महात्म्य है इसमें बहुत सी दिव्य कथाएं हैं। तो हमने पिछली बार जो सुनाई थी वो किसकी कथा सुनाई थी? गुणवती की है? इसमें एक जो है कथा बहुत सुंदर है, तो ये महाराज पृथु जो है सुन रहे हैं और नारद जी सुना रहे हैं ये कथा। तो पृथु महाराज कहते हैं नारद जी से कि हे देवर्षि, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्य करने वाला तुलसी का महात्म्य और व्रत वर्णन किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर महात्म कहिए और ये व्रत पहले किसने और कैसे किया, ये सब वर्णन करिए। तो सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी सुंदर कथा है ये। पृथु महाराज कहते हैं कि पहले कार्तिक का व्रत किसने किया, कैसे किया, हाँ तो इसका वर्णन करिए। नारद जी बोले, सही है, पर्वत पर करबीरपुर नामक नगर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था ब्राह्मण का? धर्मदत्त, है ना। और कौन सा नगर था? करबीरपुर। करबीरपुर, और ये कहाँ स्थित था? सही है पर्वत पर। वो सदा विष्णु का व्रत करने वाला, निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर, द्वादशाक्षर मंत्र के जप में निष्ठावान और अतिथियों का सेवक था। विष्णु व्रत कर सस्वन विष्णु पूजा रतः सदा, द्वादशाक्षर विद्यायाम जप निष्ठोतिथि प्रियः। एक समय वो कार्तिक के महीने में पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। तो कार्तिक का एक नियम ये है कि रात्रि के पिछले पहर में जागना, है ना। तो हमने चर्चा की थी, रात्रि का पिछला पहर निशांत काल शुरू होता है 3:22 से ना। तो पिछले पहर में जागना है, तो और फिर जागरण करना, उसके बाद जागरण करना, है ना। तो कार्तिक महीने पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। कदाचिन कार्तिके मासी हरिजागरणाय सहम रात्र्याम तुर्यांश शेषायाम जगाम हरि मंदिरम। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वो ब्राह्मण जा ही रहा था, इसी समय एक भयंकर रूप वाली कौन आई? राक्षसी। मतलब सोचिए कि वो मंगल आरती करने के लिए जा रहा है अपने घर से, कहाँ पर? विष्णु मंदिर में है। तो हरि की पूजन की सामग्री लेकर के जा रहा था। हरि की पूजन की सामग्री मतलब थाली में सब कुछ सजा करके, जैसे फूल है और है ना अगरबत्ती है, सब चीजें है ना। इसी समय भयंकर रूप वाली, टेढ़ी डाढ़ों वाली चलायमान जीव, जीव चल रहे ऐसे, जीव निकली बाहर, जीव हिल रही है और भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र और नग्न रूखे मांस और लंबे ओठ और घर घर शब्द करने वाली एक राक्षसी को देखा। सामने राक्षसी को देखा, उसे देखकर वो भय से घबरा गया, उसका शरीर कांपने लगा। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लाए हुए जल से उस राक्षसी को मारा। क्या करे, मरता क्या ना करता बोलते ना, मरता क्या ना करता। तो राक्षसी को वो भी मार दिया है। क्या मार दिया? उसमें जो है तांबे के पात्र में जल भी था, है ना, गंगा जल था, ये सब वही वही फेंक के मारा उसको, राक्षसी को, है ना। तो क्या हुआ? ताम दृष्ट्वा भयभीत त्रस्तः कंपिता वयवस्तदा पूजोपकरणे सर्वे पयोभिश्चाहनद् भयान्। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। अब देखो है ना, उसने तो अपनी रक्षा के लिए मारा था, उसने नहीं सोचा था कि इसकी रक्षा होगी, यही पापों से मुक्त होगी। अपनी रक्षा के लिए मारा था है ना, और हरि हरि अपनी रक्षा के लिए बोला था, हरि हरि है ना, और मारा था है ना। लेकिन कितनी शक्ति है इस जल में, तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षस के सब पाप नष्ट हो गए। संस्मृत्यन हरेर नाम है तुलसी युक्त मारी नाम सोहनन पातकम तस्मात सर्वम अगालयम। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों की से अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके वो बोली। अब कहा तो ब्राह्मण को खाने के लिए आई थी, अभी उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया है और उसको स्मरण हुआ कि पहले मैंने कैसे पाप किए थे जिससे मुझे ये दशा प्राप्त हुई है, और वो दंडवत प्रणाम करके ब्राह्मण से बोली। अत संस्मृत सा पूर्व जन्म कर मैं विपाक जाम स्वाम साम ब्रवीण विप्रम दंड बच्चा प्रणम्य साम। कलहा बोली, उसका नाम क्या है, कलहा। कलहा बोली पूर्व कर्म से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, हे ब्राह्मण अतः मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूँ। पूर्व कर्म में विपाके न दशाम एताम गतास्मि हम तत्कथम तो पुनर्विप्र प्राप्नुयाम उत्तमाम गतिम। नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कलह को देखकर वो ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ तो ब्राह्मण बोला, ताम दृष्ट्वा प्रणताम समजं वदमानाम सुकर्मतन अतीव विस्मितो विप्रन तदा वचनम अम्रवीत। धर्मदत्त बोले, किस कर्म के कारण तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई है, तू कहाँ की है, कौन है, कैसा तेरा शील है, सो सब मुझे बता। कलह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। कौन से नगर में, सौराष्ट्र नगर में ब्राह्मण का नाम क्या था, भिक्षु। मैं उसकी स्त्री थी और कलहा मेरा नाम था, और मैं बहुत ही निष्ठुर थी, मैंने कभी वचन से भी पति का शुभ नहीं किया और कभी मीठा भोजन खाने को नहीं दिया, मैं सदा पति को धोखा देती रही। मतलब मैं मिठाई खाती थी धोखा दे करके, और पति को कभी मिठाई नहीं खिलाती थी। सौराष्ट्र नगरे ब्रह्मण भिक्षुनाम अभवन द्विजहा तस्याहम गृहिणी पूर्वम कलहाख्योति निष्ठुरा न किंचन मया भर्तुर वत्सापि शुभम कृतम नार्पितम तस्य मिष्ठान्नम भर्तुर वंचन शीलया। मुझ कलहा से जब वो ब्राह्मण उद्विग्न हो गया तब उसने दूसरी स्त्री को ब्याहने का विचार किया। कलहा प्रिया नित्यम भयोद्विग्न मना यदा परिणे तुम तदान्याम तु पतिश्चक्रे मति मम। तब मैं विष खाकर प्राणों को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हुई, तो मैंने विष खा लिया है कि तुम शादी दोषी करोगे तो मैं तुम्हें बदनाम करूंगी विष खा करके है ना। तो यम के दूत मुझे बांध कर मारते हुए यम लोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किए हैं, सो देखो सब लिखा हुआ है पहले से, सबका जो है हाल चाल लिखा रहता है कि किसने क्या क्या कर्म किए, वहाँ सब लिखा हुआ मिलता है ना। यमराज कहते हैं कि देखो पढ़ के सुनाओ और उससे वकालत करने का अवसर नहीं देते उसको कि तुम अपने वकालत करो कि अपनी सफाई दो कि ये ऐसा एक कारण था वो कारण था उसकी गलती इसकी गलती है, नहीं पढ़ के सुनाओ और ये जो है सुनेगी। सुनाया जाता है कुछ पूछा नहीं जाता कि सफाई दो, और कोई और वकील भी नहीं दिया जाता है कि आपके पक्ष में जो है कुछ वो वकालत करें, वहाँ नहीं मिलता कोई वकील। सरकार तो वकील देती है, सरकारी वकील मिल जाता है, अगर आपको नहीं है तो सरकारी वकील मिल जाएगा, वहाँ कोई वकील नहीं होता, वहाँ तो जितना लिखा हुआ है वो सुनाया जाता है और उसको दंड देने के लिए आदेश दिया जाता है, इसको ये दंड देना है। यमराज दंड का आदेश देते हैं। तो यमराज बोले, इसने भला या बुरा जो कर्म किया हो उसी का फल पाएगी। सुनाओ। कल्हा बोली, तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले, चित्रगुप्त बोले इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है। चित्रगुप्त को कोई डर नहीं होता वहां पर कि भाई आगे चल करके मुझे कुछ करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा, मारेगा या पिटवाएगा। चित्रगुप्त को कोई डर नहीं होता है ना। इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है, स्वयं मिठाई खाती हुई अपने पति को नहीं दिया इसने। इससे ये बलगुनी नामक पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा खाती रहे। इसको एक जन्म मिलेगा किसका? बलगुनी। बलगुनी पक्षी क्या होती है? चमगादड़ मल निकालती है, अपने मुंह से ही निकालती है मल, ऐसे ही कुछ सुना है। चमगादड़ का जो मल है उसके मुंह से ही निकलता है, तो अपना मतलब अपनी विष्ठा ही खाना हुआ एक प्रकार से, मुंह से मल निकालना है ना। तो क्या कारण था? अपने पति को ना खिला करके खुद खाती थी मिठाई, इस कारण से चमगादड़ की योनि में जाएगी है ना, तो अपनी विष्ठा खाएगी है ना, या है ना। इसने पति से सदा द्वेष और कलह किया, इसलिए ये शूकर की योनि, शूकरी भी बनेगी, दूसरों का मल खाएगी, और भी बुरा है, दूसरों का मल खाएगी, तो दूसरे जन्म इसको शूकरी का मिलेगा। पहला जन्म चमगादड़ का कि खुद खाती थी और पति को नहीं खिलाती थी, और दूसरे जन्म शूकरी का। क्यों? क्या किया इसने? द्वेष किया और झगड़ा किया पति के साथ, तो शूकरी का जन्म मिलेगा। और सदा उसी बर्तन में बनाती थी और खाती थी, जिस बर्तन में बनाती थी कड़ाही और बटुली में, उसी में खाती थी कि भाई और दूसरे बर्तन क्यों ज़्यादा होंगे तो साफ करने पड़ेंगे। तो उसी में बनाती, उसी में खाती थी और पता भी ना चले पति को है ना, तो इसलिए धोती भी नहीं थी उन बर्तनों को है ना। इसलिए बिल्ली क्यों नहीं प्राप्त करें। तो बिल्ली क्या करती है? चुपके से खाती, उसी जो जो बर्तन मिल जाए उसी में खाती है ना। तो बिल्ली भी बनेगी, तो तीन जन्म है, तीन प्रकार के पाप का, तीन प्रकार का जन्म इसको मिलेगा। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, पति से द्वेष करके विष खा करके आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत शरीर में ये रहेगी। तो चौथा पाप, इसने आत्महत्या की है अपने पति से द्वेष करके, तो ये प्रेत योनि प्राप्त करे है ना, और मरु देश में इसको पहुंचा दिया जाए, मरु देश जहां पानी भी नहीं मिले, जहां पानी भी ना मिले, तो वहां पर इसको प्रेत योनि इसको दी जाए। और बहुत समय तक ये पहले प्रेत योनि में रहेगी, फिर ये तीन योनियों का भोग करेगी, चमगादड़ का शरीर प्राप्त करेगी, फिर बिल्ली शुकरी, फिर बिल्ली, तीन योनि और है ना भोग करेगी। तो कल्हा बोली, अब उसके अनुसार मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में भूख प्यास से पीड़ित हूँ और अपने कर्म से दुख पा रही हूँ। 500 साल हो गए मुझे किसमें? प्रेत योनि में है ना। साहम पंच शताब्दानी प्रेत देहे स्थिता किल है क्षुत्रभ्याम पीड़िता नित्यम दुखिता स्वेन कर्मणाम। भूख प्यास से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। किसी वैश्य के शरीर में मैं प्रवेश कर गई, तो कहाँ पर आ गई मैं? कृष्णा वेणी के संगम में आ गई। जब उनके तट पर पहुंची तभी शिव और विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया, मार मार करके मुझे भगा दिया, वहां से निकाल दिया। हे ब्राह्मण, तब भूख से पीड़ित मैं तुम्हारे सामने आई और तुम्हारे हाथ के तुलसी दल युक्त जल के संसर्ग से मेरे पाप दूर हो गए। तथा छुन छाम या ही तुम गच्छन दृष्टो दुजोत्तम तुन हस्त तुलसी नीर संसर्ग गत पापयाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं आगे होने वाली तीन योनि और इस प्रेत योनि से मुक्ति पा जाऊं। अब मैं क्या चाहती हूँ? इस प्रेत योनि से भी मुक्त हूँ और आगे तीन योनि भी मुझे ना प्राप्त हों। इस प्रकार कल्हा के वचन सुनकर और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी ग्लानी देखने से ब्राह्मण बहुत देर तक शोक करते हुए दुख से ये वचन बोला। अब ब्राह्मण क्या बोला, क्या नाम है ब्राह्मण का? धर्मदत्त। धर्मदत्त बोले, तीर्थ दान और व्रत से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत के शरीर में उनका अधिकार नहीं है, इन कर्मों में अधिकारी नहीं है। तो तुम्हारा तो अधिकारी नहीं है क्या? तीर्थ दान और व्रत इन सब कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम प्रेत शरीर में हो। तेरे दुख को देखकर मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ, इसलिए तेरा उद्धार किए बिना मैं सुखी नहीं होऊंगा। तीन योनि को देने वाले तेरे पाप बहुत उग्र हैं और अति निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से जाएगी नहीं। अतएव जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, क्या जन्म से लेकर के आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, ये थोड़े पुण्य से काम नहीं चलेगा। अब तेरा उद्धार करने के लिए मुझे कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा और तू कुछ कर नहीं सकती है ना? तो क्या मैं कर रहा हूं, जन्म से लेकर के आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त कर ले। आधा पुण्य में दे रहा हूं उसको, है ना। पातकम चातवात्युग्रम योनेत्र पाकदम नेबालपे क्षीयते पुण्य प्रेतत्वम चाति गर्हितम तस्मादा जन्म चरितम यन्मया कार्तिक व्रतम तत्पुण्यस तत्पुण्यास तदर्द भागे न संगतित्वम अवाप्नुहि। क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ और व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के समता नहीं हो सकती है। कार्तिक व्रत पुण्येन साम्यम यान्ति सर्वथा यज्ञदानानि तीर्थानि दत्तान्यापि यतो ध्रुवम्। नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे धर्मदत्त ने उसे द्वादश अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी दल से मिश्रित जल उस पर छिड़का, तैसी वो प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदरी हो गई। हरि बोल, हरि बोल। तावत् प्रेतत्व निर्मुक्ता जलदग्नि शिखोपमा दिव्य रूपे धरा जाता लावण्येन यथेन्दिरा। तब उसने ब्राह्मण का को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली, कल्हा बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कृपा से नरक से छोटी पाप के प्रवाह में डूबी हुई मेरे लिए आप नौका बन गए हैं। तथा सा दंडवत भूमो प्रणनामाथ तम द्विजम वाच सा तदा वाक्यम हर्ष गंगद भाषिणी। तत्प्रसादा द्विज श्रेष्ठ है निर्मुक्ता निर्याद हम पापोघ है मज्जमानायास तम नोर्भूत हो सि मे ध्रुवम। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसा कहती हुई उस कलह ने प्रकाशमान विमान देखा, एक प्रकाशमान विमान देखा, विष्णु जैसे रूप वाले गण उसमें बैठे हुए हैं, ऐसा विमान देखा। इत्थम सावदती विप्रम दर्शायांतम अम्बरान विमानम भास्वरैर्युक्तम विष्णुरूपैधरैर्गणे। उस कलह को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उन पार्षदों का नाम क्या था? पुण्यशील और सुशील, है ना, पुण्यशील और सुशील। जैसे ध्रुव महाराज को जब विमान आया था तो नंद और सुनंद नाम के गण थे, ध्रुव महाराज को लेने आए थे, और यहाँ पर विमान आया है तो पुण्यशील और सुशील नाम के दो, है ना, सेवक हैं। उन्होंने उत्तम विमान में बिठाया उसको। अधस्तातन विमानाग्र्यम द्वास्थाभ्याम अधिरोपिता पुण्यशील सुशीलाभ्याम अप्सरो गण सेविता। उस समय उस विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देखकर उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। बहुत आश्चर्य हुआ, धर्मदत्त को भी आश्चर्य हुआ कि मुझे मेरे लिए तो नहीं आया विमान, मैंने अपना आधा पुण्य दिया तो इसके लिए तो विमान आ गया है, और देखो भगवान के साक्षात सेवक ये भी, इनके भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। तो उसने प्रणाम किया। तद्यमानं ददा पश्यन् धर्मदत्तः समिस्मयं पपादे दण्डवत् भूमौ दृष्ट्वा तो विष्णुरूपिणौ। पुण्यशील और सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। उठाकर के प्रशंसा की, धर्मयुक्त वचन बोले, क्योंकि धर्मदत्त को ये संशय भी हुआ ना, और संशय होगा भी है कि उस पापनी को मैंने अपना पुण्य दिया तो इसके लिए तो विमान आ गया, मेरे लिए तो कभी नहीं आया विमान। तो पुण्यशील सुशील उसको उठा करके और उसको जो है समझाते हैं। समझने वाली बात है ना। गण बोले, हे दुःश्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तो धर्मदत्त सोच रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ दोष होगा, बहुत बड़ा दोष होगा कि मेरे लिए विमान नहीं आया। तो वो बताते हैं, उसको उठाया है, वो प्रणाम कर रहे हैं धर्मदत्त, तो उठाया, बोले कि तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, है? तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो, तुम दिनों पर दया करने वाले हो, धर्मज्ञ हो, सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक व्रत किया था उसका आधा फल देने से कल्हा के 100 जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए हैं। हरि बोल। आबालत्वान् शुभम त्वेतन् यत्त्वया कार्तिके व्रतम् कृतम् तस्यार्धदानेन यदस्या पूर्वसंचितम् जन्मांतर शतोद्भूतम् पापम् तन्विलयम् गतम् स्नानादेव गतम् पापम् यदस्या पूर्वकर्मजम्। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए। कार्तिक में जो स्नान किया तुम, कार्तिक में जो स्नान करते थे उससे तो इसके 100 जन्मों के पाप दूर हो गए, है ना। और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है उसके फल से विमान आया है। तुम जो जागरण करते थे, मंगल आरती करते थे, है ना, जागरण करते थे, उसके फल से क्या आया है, इसके लिए विमान आया है। हरि जागरणाद्यश्च विमानम इदमाश्रितम वैकुंठम नियते साधो नाना भोगे युतात्वयम्। तो हे साधो, ये नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। तो देखो, एक एक कार्तिक में एक एक कर्म का क्या क्या फल है। स्नान के द्वारा पाप, 100 जन्म के पाप दूर हुए, और हरि जागरण मंगल आरती के कारण विमान आया और जा रही वैकुंठ जा रही है। और कार्तिक में जो तुमने दीप दान किया है उसके पुण्य से तेजस्वी रूप इसे प्राप्त हुआ है, अग्नि के समान, मतलब जैसे अग्नि जल रही हो ऐसा प्रकाशमान रूप इसको प्राप्त हुआ है दीप दान जो तुमने किया कार्तिक में। तो सौंदर्य और तेज प्राप्त होता है दीप दान के द्वारा। और कार्तिक व्रत में जो तुमने तुलसी आदि पूजन किया है, तो उसका क्या फल है। दीपदान भवे पुण्यस तेजसाम रूपमास्थिता तुलसी पूजनाद्यस्या कार्तिके व्रतके शुभे। तुमने जो तुलसी पूजन किया है, और वो पुण्य तुमने इसको दिया है, है ना, तो पूरा हर चीज का तो आधा पुण्य मिल गया ना इसको। तो तुलसी पूजन जो तुमने किया है उससे ये विष्णु के समीप जाने के अधिकारिणी हो गई है। वैकुंठ में भी विष्णु के समीप रहना ये तो और विशेष बात है ना। वैकुंठ में जाना तो विशेष बात है ही है, फिर विष्णु के समीप रहना और भी विशेष बात है। वो किस कारण से, तुलसी पूजन। तो चार बातें हुई ना, स्नान अलग है और हरि जागरण अलग है और दीपदान अलग है और तुलसी पूजन अलग है। कार्तिक में चार प्रकार के कार्यों से जो है चार प्रकार के फल प्राप्त हुए हैं। इस जन्म के अंत में स्त्रियों से तुम भी विष्णु लोक जाओगे, तो तुम्हारी भी गारंटी हो चुकी है, निश्चित हो चुका है कि तुमको जाना ही है, है? तुम जाओगे। तो तुम मत सोचो कि तुम्हारे अंदर कोई दोष है कि तुम्हारे लिए नहीं आया विमान। तो चिंता मत करो, तुम्हारा तो निश्चित है ही है कि तुमको जाना ही है। विष्णु सन्निधि गा जाता तो या दत्ते कृपा निधे तुमप्यस्य भविष्यान्ते भार्याभ्याम सहया शशी। अपनी पत्नियों के साथ तुम जाओगे विष्णु भवन में, है ना, और विष्णु लोक में भी पत्नियां साथ में रहेंगी, पत्नी के रूप में रहेंगी तुम, है ना, वहां भी तुम पत्नियों के साथ में रहोगे, है ना, ये भी है। और विष्णु वैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्राप्त हो गई। वे धन्य है और वे कृतकृत हैं, उन्हें का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु पूजन किया। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया। जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। यर भक्ति आराधितो विष्णु धर्म दत्त तो यथा सम्यग आराधितो विष्णु किन्न यच्छति देहिनाम औतान चरण येन ध्रुवत्व स्थापिता पुरा यन्नाम स्मरणा देव देहिनो यान्ति संगतिम। ग्राह्य द्वारा पकड़ा हुआ गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त होकर उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गण कहलाया। वो जो ग्राह था वो गजेंद्र था, वो जय नाम का गण बन गया। भगवान का वैकुंठ में जय नाम का उनका गण बन गया। ग्राह गृहीतो नागेन्द्रो यन्नाम स्मरणात् पुरा विमुक्ता सन्निधिं प्राप्तो जातो यम जय संघ कहा। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है इसी तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप प्राप्त हो गए। यतस्त्वयार्चितो विष्णु तत्सान्निध्यम प्रयाससी बहुन्यब्दे सहस्राणी भार्याद्वय युतस्यते। तुम्हारी दो पत्नियां, दोनों पत्नियों के साथ तुम वैकुंठ भवन में जाओगे, है ना? तब जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तब पृथ्वी में आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा बनोगे और तुम्हारा नाम दशरथ होगा। हाँ, और वहां भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे। अभी तो तुम्हारी दोनों पत्नियां हैं, वैकुंठ में भी दोनों पत्नियां रहेंगी तुम्हारे साथ और वे तुम्हारी पत्नियां रहेंगी जब तुम राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे। और तीसरी कल्हा पत्नी ये भी होगी, तीसरी पत्नी यही तीसरी पत्नी होगी कल्हा कहते ही क्योंकि ये भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। नामना दशरथस्तत्र नामना दशरथस्तत्र भार्याद्वयुतः पुनः तृतीयान याचापि याते पुण्यार्थ भागिनी तत्रापि तव सान्निध्यम विष्णुर्यास्यते भूतले आत्मानं तव पुत्रत्वे प्रकल्प्याम अरे प्रकल्प्यामरे कार्य क्रेन। उस जन्म में विष्णु पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। वैकुंठ में तुम विष्णु के समीप रहोगे, फिर जब तुम यहाँ होगे तो विष्णु तुम्हारे समीप रहेंगे, हाँ, और देवताओं का कार्य करेंगे, है ना, पृथ्वी का भार उतारेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से ना यज्ञ ना दान और ना तीर्थ अधिक हैं, अर्थात ये कार्तिक का व्रत सब यज्ञ आदिगों में श्रेष्ठ है। तबोर्जस व्रतादस्माद विष्णु संतुष्टि कारकात् न यज्ञाना च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वै। हेरा ब्राह्मण तुम धन्य हो, इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला ये व्रत संपन्न हुआ। इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कल्हा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। धन्यो श्री विप्रेन्द्र यदस्त्वयतन व्रतम कृतिम तुष्टिकरम जगत गुरो यदर्थ भागात सफला मुरारे प्रणीयते स्माभिर्यम सलोकताम। तो इस प्रकार से जो है बड़ी सुंदर कथा आपने सुनी कार्तिक के महात्म्य की। इसमें आप लोगों में से कितने लोगों ने ये कथा पहले सुनी है? सुनी है, जिन्होंने सुनी है तो जितना सुने उतना ही रस है, इसमें कुछ कमी नहीं होती रस की, है ना। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ हाँ, जब यातना दी जाती है तो हाँ, जोर से बोलो क्या? सूक्ष्म शरीर को दिया जाता है या आत्मा को? अच्छा, सूक्ष्म शरीर को दिया जाता है या आत्मा को? देखिए, यातना देहम आवृत्य पाशैर बद्ध्वा गले बलात्। जो यमदूत हैं जब निकालते हैं उसको तो यातना देह है उसको देते हैं, उसको यातना देह प्रदान करते हैं, एक यातना देह मिलता है। यातना देह यातना भोगने के ही लिए होता है, ये आपका जो शरीर है ये यातना नहीं भोग सकता, लेकिन वो यातना देह है देते हैं जो नष्ट नहीं होगा, कष्ट ही कष्ट मिलेगा उसमें, नष्ट नहीं होगा। कितना कष्ट है, कष्ट ही कष्ट होगा। भूख का कष्ट है, प्यास का कष्ट है, जलाने का कष्ट है ना, कटने का कष्ट है, बहुत तरह के कष्ट हैं, लेकिन नष्ट नहीं होता, समझे ना। और नष्ट हो जाता है तो फिर से बन जाता है ना, टुकड़े टुकड़े हो जाता है फिर से बन जाता है, फिर टुकड़े टुकड़े करते हैं फिर बन जाता है। और कितना कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है, वो यातना देह प्राप्त होता है उसको, ठीक है ना। धन्यवाद। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री वीरचंद्र गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। गौरताय की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री यशोदा दामोदर की जय। Gracias.